इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अयम तु ब्रह्म कल्प सदकल्प उदाहरता विधि साधारण जत्र सर्ग प्राकृत वैकृता। अयम तु यही है ब्रह्मा का कल्प जो विकल्प के साथ कहा गया, उदाहरता का अर्थ कहा गया सदकल्प विकल्प के साथ ब्रह्मा का यह कल्प उदाहरित हुआ वर्णित हुआ। इसी कल्प विकल्प में इसी कल्प में समस्त सृष्टि होती है और सृष्टि दो प्रकार की है प्राकृत और वैकृत।
तिलक करते हैं इसके बाद चाहे स्कूल जाएं या दुकान में जाएं या मंदिर में आएं, फिर हमारी शाम होती है,
शाम के समय हम पुनः सो जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व का एक दिन होता है मतलब उस अधिकारी का जिसे इस जगत में ब्रह्मा कहता है और ब्रह्मा की उम्र है भगवान महाविष्णु के एक निःश्वास तक बस। निःश्वास कहते हैं जब सांस बाहर निकलती है और प्रश्वास कहे जाते हैं उसको जब भीतर सांस आती है उसको प्रश्वास कहते हैं। निःश्वास प्रश्वास तो जस शरीर निःश्वसित काल मथा लंब जीवन के लोम दिल जाए जगदंड नाथा। तो जितने भी जगदंड ब्रह्मांड के नाथ हैं जैसे ब्रह्म शिव आदि ये सब कब तक रहते हैं जस एक निःश्वसित काल है बस। निःश्वसित काल मतलब भगवान विष्णु जब सांस लेते हैं कारणोदक साहिब भगवान जब सांस लेते हैं सांस से बाहर करते हैं तो उतने ही काल तक जगदंड नाथ है जीवन की ब्रह्मांड नाथ लोग रहते हैं बस उनकी जीवन अवधि है। और वह जीवन अवधि कितनी है 1,54,40,000,000,000 वर्ष। इतनी देर तक सांस भगवान की रहती है बाहर और फिर वे प्रश्वास लेते हैं तो उनके प्रश्वास के साथ ही ब्रह्मा आदि सब उनके भीतर समा जाते हैं सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो ब्रह्मा जी का जीवन महाकल्प कहलाता है पूरी जिंदगी को महाकल्प कहते हैं। तो वह जैसे मैं बताया जोड़ करके दूसरी जगह से कि 1,54,40,000,000,000 वर्ष होता है ये संपूर्ण 100 वर्ष की उनकी जिंदगी है जिसको परार्ध कहते हैं दिन परार्ध। अच्छा ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है एक दिन कल्प कहलाता है और ब्रह्मा जी के तीसरे दिन का नाम यहां दिया गया है। हम लोगों के यहाँ जो काल विभाजन है वो 7 दिन में है ना बदलता रहता है 7 दिन का कल दिन है लेकिन ब्रह्मा जी के दिन जो चलते हैं उनके 30 दिन है। हम लोग इस जगत में रह रहे हैं यहाँ पर तो सप्ताह में छुट्टी होती है संडे हो जाता है जैसा आज है तो हमारी जो जीवन अवधि गिनी जा रही है सप्ताह में भी बंटा हुआ है लेकिन ब्रह्मा जी का सप्ताह में नहीं बंटा है त्रिंस अह मतलब दिन 30 दिन का उनका चलता है और प्रत्येक दिन का नाम है जैसे हम लोगों का रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार ये सब वार है इसलिए हम लोगों के वार केवल 7 दिन है कि हम कुछ सप्तर्षियों के ग्रहों के अधीन है हमारा जीवन ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है लेकिन ब्रह्मा जी का जो दिन है वो इन ग्रहों की चाल पर निर्भर नहीं है क्योंकि वो ग्रहों के भी अधिपति हैं सबके स्वामी हैं तो उनके दिन 30 दिन के होते हैं उनका महीना 30 दिन का होता है जैसे हम लोगों का लेकिन 30 दिन अलग अलग दिन होते हैं जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ स्कंद पुराण से गिनाया उनका दिन एक दिन होता है 1,000,000 युग के बराबर। भगवान ने गीता में कहा है 1,000,000 युग पर्यंतम अहर जब ब्रह्मरो विदु ब्रह्मण अह ब्रह्मा जी का दिन 1,000,000 युग पर्यंतम 1,000 चतुर्युग का होता है और 1 चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है सत्य त्रेता द्वापर और कली इन चारों को मिलाया जाता है एक बार जब लिखते हैं तो इसको एक चतुर्युग कहा जाता है और एक चतुर्युग 45-20 हजार वर्ष का होता है। तो इस तरह से जब 1000 वर्ष से चारों युग लिखते हैं तो इसको सहस्र युग पर्यंतम कहा जाता है। इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी इनकी रात होती है। जैसे हम लोगों का भी अनुभव है कि जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी हमारी रात है ना। कुछ गर्मी में या ठंडा में थोड़ा घटना बढ़ता है लेकिन 24 घंटे का होता है। जितना बड़ा दिन होता है उतनी ही बड़ी रात होती है। और ब्रह्मा जी उतनी लंबी नींद लेते हैं। एक सहस्र चतुर्युग तक वे जाग करके काम करते हैं, सृष्टि आदि करते हैं और जब विश्राम करना होता है तो ठीक इतना ही विश्राम करते हैं। लेकिन मनुष्य बहुत कम विश्राम करते हैं, है कि नहीं? इधर दिन भर काम करते रहते हैं, रात में भी सिनेमा आदि देखते रहते हैं या फैक्ट्री में काम करते रहते हैं। कुछ लोग तो नींद ही हराम हो जाती है, सोना जानते ही नहीं, गोली खाते हैं सोने के लिए, मरते रहते हैं। वास्तव में मनुष्य को काम करना चाहिए, उसके साथ ही साथ आराम भी करना चाहिए। और तत्व का आराम न करके उसे चाहिए कि भगवान की भक्ति करें। हरे कृष्णा। तो अलग अलग लोकों में अलग अलग दिनमान है, रात्रिमान है। मान मतलब माप, दिन का अपना हिसाब है, रात्रि का हिसाब। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह है ब्रह्मा जी का कल एक दिन। और श्रीमद् भागवतम में जो भी सृष्टि का वर्णन है वो ब्रह्मा जी के एक दिन की सृष्टि का वर्णन है। यह ध्यान देने की बात है। जत्र साधारण सर्ग, इसका अर्थ है ब्रह्मा जी के एक दिन में जो सृष्टि होती है उसी का वर्णन है। ब्रह्मा जी के पूरे जीवन में जो सृष्टि होती है उसका बहुत कम वर्णन है, मन मात्र वर्णन। लोग पूछा करते हैं कि जीव कहां से आया, कब आया, कैसे आया, कोई प्रश्न ही नहीं है। जैसे यहां हम सब इतने व्यक्ति जुटे हैं और कोई अनजान आदमी आकर के लगे कुछ नहीं, ये सब कहां से आए हैं, कहां से जन्म हो गया इनका, तो आज थोड़े जन्म हुआ है। आज तो जन्म हुआ नहीं, हम लोग पहले के हैं, प्रत्येक संडे को आते हैं, जब प्रथान में दिन भी आते हैं। ऐसे जीव अनादि काल के हैं, बीच बीच में सृष्टि होती रहती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो सृष्टि होती है उसको प्राकृत सृष्टि और वैकृत सृष्टि कहते हैं। तो प्राकृत सृष्टि का अर्थ होता है जो भगवान रचना करते हैं, तो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच महाभूत और अहंकार, इसकी सृष्टि भगवान करते हैं। अथवा आठ की सृष्टि करते हैं, भूमि, रापो, नलो, वायु, खम, मनोबुद्धि, रेवच, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार और पंच महाभूत, इनकी सृष्टि को प्राकृत सृष्टि कहते हैं। ये भगवान के द्वारा बनाया जाता है। और वैकृत सृष्टि ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि होती है या उनके पुत्रों के द्वारा, उसको कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। आप लोगों के सामने यहां भी बहुत सृष्टि है, शायद इस इलाका को सृष्टि कहते भी है, सृष्टि है। लेकिन इस सृष्टि में जो सृष्टियां हो रही हैं, ये घर मकान बन रहे हैं, इसको वैकृत सृष्टि कहेंगे। और पहले से जो पत्थर या ईंट, भूमि आदि जो कुछ है, भूमि, जल, वायु जो है, इसको प्राकृत सृष्टि कहेंगे। ये वस्तुएं मिली हैं पहले से, तो इसी में से हम गढ़ गढ़ करके कोई घर बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इसको वैकृत सृष्टि कहेंगे। विविध प्रकार का डिजाइन हम देते हैं। यदि प्राकृत सृष्टि नहीं रहती, भगवान इन वस्तुओं का निर्माण नहीं किए होते, तो हम कहां से भवन बनाएंगे? अपने अपने पेट में से इतना ऊंचा ऊंचा भवन तो निकाल नहीं सकते, है ना? कहां से बनाएंगे? पहले भगवान सारा स्टॉक हमें दिए हैं। इसी से संस्कृत भाषा में इन पांच वस्तुओं को महाभूत कहा गया है। भूत पंचक या महाभूत, पंच भौतिक। तो महाभूत इसलिए कहते हैं, महा का अर्थ होता है महान, बृहद मात्रा में बहुत अधिक और भूताकार्थ हुआ, बृहद मात्रा में जो वस्तुएं हुई हैं उसको पंच महाभूत कहते हैं। महाभूत जैसे भूमि, भूमि का स्टॉक भगवान ने बहुत बनाया है ना, पूरी सृष्टि को केवल भूमि को देखा जाए, इस पृथ्वी को तो बहुत बड़ा स्टॉक है, जमीन इसकी कीमत तो कोई आंक ही नहीं सकता है कि होल पृथ्वी की कीमत क्या होगी। इसमें जो भी सोना चांदी कोयला पेट्रोल आदि हैं सबके साथ इस पृथ्वी को कोई खरीदना चाहे तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसकी कितनी कीमत होगी। केवल भूमि आप लोगों के अनुभव मीरा रोड में छोटा छोटा टुकड़ा कितना दाम में बिक रहा है, ये केवल ऊपर, उसके भीतर हमारे कोई अधिकार नहीं है। अधिक से 10-20 फीट तक हमारा अधिकार है, जहां तक नींव गई है भवन है ना, और उसके नीचे सोना गड़ा है क्या है इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ना हम जानते हैं कुछ भी मतलब नहीं। और कहां तक ये पृथ्वी गई है नीचे, इसके भीतर क्या क्या है, उन रत्नों को यदि निकाला जाए और सब मिला सारा तेल सारा गोल्ड सारा सिल्वर सारा डायमंड हीरा आदि सब बेचा जाए तो कितने की होगी वस्तु, अपार है, भूमि अपार है, इसीलिए इसको महाभूत कहते हैं। और इसी भूमि से छोटे छोटे भूत हम लोग गढ़े गए हैं, हमारा शरीर गढ़ा गया है और हम जमीन से बने हैं, धूली से बने हैं, मिट्टी से, और पुनः मिट्टी में जाना है ना। हम जमीन से भूमि से उत्पन्न हुए हैं और भूमि को खा रहे हैं। जैसे माता पिता के वीर्य रज से हमारी उत्पत्ति होती है हमारे शरीर की, तो वो भी भूमि का विकार खाए हैं, भूमि खाए हैं, तो फल खा रहे हैं, दूध खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, या मांस भी जो खाते हैं वो भी भूमि खा रहे हैं। भूमि से जन्म हुआ, भूमि को का विकार खा रहे हैं और भूमि के भीतर चले जाना, चाहे राख बन करके जाए चाहे कोई कब्र बनाकर रख दे, सीधे जाना तो है। कोई ऐसा विश्वास करते हैं कि वो नहीं जा पाएंगे, नहीं, सबको जाना है, हम विवश हैं इसके लिए। तो इसी भूमि से हमारा देह भी उत्पन्न हुआ है, देह से जो हम भोग रहे हैं, वस्तु खा पी रहे हैं, वो वस्तुएं भी भूमि से उत्पन्न होती हैं। और जो घर मकान बनाए हैं, जो वाहन बनाए हैं जिस पर हम चल रहे हैं, या जो फोन उठाकर बोल रहे हैं, सब कुछ भूमि से निकला हुआ है। इस महाभूत से, इस महाभूमि से विविध वस्तुओं का निर्माण हो रहा है और ये नष्ट होने के बाद पुनः भूमि में समा जाती है। इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा स्टॉक है, वो है जल। भूमि राप, आप मतलब जल, पानी। पानी का स्टॉक इस भूमि से अधिक है, जैसे नापा जाए तो महासमुद्रों में, महासागरों में जो पानी है उसकी लंबाई चौड़ाई बहुत है और गहराई भी। प्रशांत महासागर इतना गहरा है कि हिमालय को रख दिया जाएगा पता नहीं चलेगा उसमें, इतना गहरा है। आजकल के वैज्ञानिक भी बताते हैं, और आपने सुना होगा समुद्र मंथन प्रसंग में कि 10,000 योजन मतलब 80,000 माइल ऊंचा और इतना ही चौड़ा पर्वत लाया गया मंथन बनाने के लिए, मंथन दंड बनाने के लिए, और देवता दानव मिल करके जब उसको क्षीर समुद्र में डालना चाहे तो वो गज से डूब गया, अभी तक पता नहीं चला कहाँ चला गया, और सब रोने लगे। 80,000 माइल ऊंचा पर्वत उसमें डूब गया, पता ही नहीं चला कहाँ चला गया। तो भगवान उस समुद्र के भीतर कच्छप अवतार धारण किए, जिनकी पीठ 8,00,000 माइल चौड़ी थी, 1,00,000 योजन पीठ, और उस पर उन्होंने मंदराचल को उठाया। तब देवता दानव पुनः मठने लगे, और भगवान की पीठ पर जब मंदराचल रगड़ा जा रहा था उसमें भारी भारी चट्टानें निकली थी सोने की, उन चट्टानों की रगड़ हो रही थी तो भगवान को सुख की नींद आ गई, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। यह शास्त्र कहता है, छितिरी है विपुल तरे तव पृष्ठ, धरण धरण कृण चक्र गरिष्ठ,
केशव धृता कच्छप कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे। भगवान विश्व की निंदा में तो मैं यह कह रहा था कि भूमि से भी अधिक स्टॉक है जल का और जल से भी अधिक स्टॉक है वायु का, हवा का। सर्वत्र हवा बिखरी हुई है, बहुत दूर में हवा फैली हुई, सब सर्वत्र सर्वगह सबको हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है। बिना पानी के हम जी नहीं सकते। यहां तक ये स्थावर जाति के जीव भी जैसे वृक्ष आदि भी बिना पानी के नहीं जी सकते। हम पानी के बिना नहीं जी सकते। नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़ा धोने के लिए पानी चाहिए, पीने के लिए, पशुओं के लिए, फैक्ट्री चलाने के लिए, है ना, सभी कामों में पानी। घर बनाना हो बिना पानी के नहीं बनेगा, पानी की आवश्यकता होती है। सब कुछ के लिए आवश्यकता है। और दुकानों में जो वस्तुएं भरी हुई हैं वे सब पृथ्वी से निकली हैं और पानी की बहुत जरूरत है। फिर अग्नि, आग, आग भी भगवान ने सब जगह बनाया है। आग एक भयानक वस्तु है, इसलिए भगवान ने उसे बड़े अदृश्य रूप में रखा है, उसे उत्पन्न करना पड़ता है, लेकिन वो सर्वत्र विद्यमान है। जैसे मान लीजिए यहां ईंधन रखा हो और दिखाई नहीं पड़ रहा है अग्नि, परंतु एक दिया सलाई की माचिस हम मारते हैं, इतनी छोटी सी आग उसको पकड़ती है तो यही आग नहीं बढ़ जाती है, उस लकड़ी के भीतर ऑलरेडी आग है, वही आग प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दिया सलाई ने आग इतना बढ़ा दिया, और केवल कारण हुआ, स्विच ऑन हुआ प्रकट करने के लिए। और जितना बड़ा ईंधन होगा उतनी बड़ी आग उत्पन्न हो जाएगी, और जितनी बड़ी आग होगी उतनी बड़ी आंच होगी, इस तरह से। तो उसमें है पहले से अग्नि है, विद्यमान है। और अग्नि का कितना स्टॉक है, अभी बहुत है। जितनी लकड़ियां हैं, जितने कोयला है, सब में आग विद्यमान, सब जगह। यहां तक कि ये मार्बल आदि में भी आग है, इसे भी जलाया जाता है। जैसे आप सीमेंट देखते हैं, सीमेंट एक प्रकार का पत्थर होता है, उसे बनाया जाता है, जैसे चूना बनाया जाता है, इसमें भी आग है, लेकिन उस आग को प्रकट करने की विधि होती है। तो सारी सृष्टि आग से ओतप्रोत है, आग सब जगह व्याप्त है, जैसे वायु सब जगह व्याप्त है। और इसके बाद है महास्टॉक, जो सबसे ज्यादा है वो है आकाश। आकाश, इसको अवकाश भी कहते हैं, स्पेस, इंग्लिश में इसको स्पेस कहते हैं, लेकिन वो इसका वास्तविक अनुवाद नहीं। आकाश, अवकाश, जिसमें सारी सृष्टि है। इस सृष्टि के लिए आकाश की बहुत आवश्यकता है। यदि आकाश न रहे तो कहां, किसमें कहां कहां सृष्टि करेंगे? हम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, रेल चला रहे हैं, वायुयान चला रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं आकाश के भीतर कर रहे हैं। यदि भगवान का वारंट आ जाए हम सबके लिए, मेरा आकाश खाली करो, जाओ जहां इच्छा हो चले जाओ। मान लीजिए भगवान एक दिन नोटिस भेजे, हमारे आकाश में से हटो, जाओ जहां जाना, तो हाथ जोड़ने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं रहेगा कि माफ कीजिए, हम कहां जाएं? तो भगवान ये भी कह दें, अपनी अपना जीप लेकर के जाओ जो दूसरी जगह, हमारे आकाश में मत रहो। कहां जाएंगे? तो हम आकाश लेकर के नहीं आए थे, है ना? हमारे चतुर्दिक आकाश है, हमारे कान में आकाश है, अंतर वही दो तरह के आकाश, इंद्रियों के छेदों में आकार है और बाहर आकाश आकाश। तो इसको महाभूत कहते हैं, इसको प्राकृत सृष्टि कहते हैं। यहां प्राकृत शब्द आया है इसलिए मैं कह रहा हूं। और वैकृत सृष्टि ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक हम सब कर रहे हैं, भगवान की बनाई हुई वस्तुओं का रूपांतरण कर रहे हैं। विकृति, विविधाकृति, विकृति, विविधाकृति। एक दुकान में हम लोग जाते हैं, कितने कितने आकार हम दिए हैं वस्तुओं का, कितना रंग, कितना क्या क्या, इसको विकृति कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक कल्प में कितनी कितनी विकृतियां होती है, कितनी कितनी सृष्टियां होती हैं, इन सब का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आया है। और इसलिए यह वर्णन दिया जा रहा है कि इस अध्याय के प्रारंभ में ही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मुतया मनवंत ऐशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सृष्टि स्वर्ग और विसर्ग, स्वर्ग वही प्राकृत कहलाता है और विसर्ग वैकृत कहलाता है। विसर्ग का अर्थ है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि किया हुआ, ब्रह्मा जी की सृष्टि, और स्वर्ग का अर्थ होता है भगवान के द्वारा की हुई सृष्टि। तो जब भगवान महाभूत दे देते हैं और मन बुद्धि अहंकार, तो उसी में से ब्रह्मा जी ले लेकर के डिजाइन करते हैं, उसी में से उनके पास कोई भी शक्ति नहीं है जो कुछ कर सके। जैसे किसी मनुष्य को कहा जाए कि तुम घर बनाओ, लेकिन खबरदार मिट्टी नहीं लेना है, पानी नहीं लेना है, हवा आदि कुछ नहीं लेना, तो मर जाएगा। पहले सांस लेने के लिए हवा चाहिए, बनाने के लिए तो दूर रही बात है ना। तो इस तरह से हम लोग परवश हैं, दीन हैं वास्तव में। तो भगवान की महानता को समझने के लिए श्रीमद् भागवतम है, हम इसको समझें। हम सब तरह से दीन हैं, हीन हैं, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ब्रह्मा से लेकर के अब तक के जितने भी आचार्य हुए भगवान के भक्त, सभी यही कहते हैं कि हम दीन हैं, हम हीन हैं, हम भगवान की याद करें, उनके उपकार की याद करें। भ्रम से यह मान लेना कि मैं भगवान हूं, इससे बड़ा अज्ञान कुछ भी नहीं हो सकता है। अज्ञान ही नहीं, सबसे बड़ा पाप भी है वास्तव में, यह अपराध है। कोई कह दे कि मैं भगवान हूं, या दूसरा कोई किसी को कह दे भगवान है, तो वो भी पापी है वास्तव में, अपराधी। उसे समझना चाहिए भगवान की महानता। तो इस भगवत तत्व को हम इस तरह से समझते हैं, उनकी सृष्टि की विशालता से और उनके सृष्टि की करुणामय व्यवस्था से, उनके सौहार्द का, उनके महान ज्ञान का, उनके विविध कौशल का हम अध्ययन करते हैं, अनुमान करते हैं। भगवान ने गीता में जब यह कहा कि मनुष्याणाम सहस्रसु कश्चित् जतति सिद्ध है जततां अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई कोई सिद्धि के लिए प्रयास करता है। सिद्धि क्या है? सिद्धि का अर्थ है काम क्रोध लोभ आदि से छूटने का प्रयास करता है, अपने स्वरूप में होने का। लेकिन जतता मपि सिद्धा नाम, जत्न करने वालों में से हजारों हजारों में कोई एक सिद्ध होता है, काम क्रोध लोभ आदि से पार होता है, और हजारों हजारों जित काम क्रोध में से कोई एक मुझको तत्व से जान पाता है। तो इस पर अर्जुन को आप जिज्ञासा हुई कि किस उपाय से आपको जाना जाएगा, आपका ज्ञान इतना दुर्लभ है, आप कुछ उपाय बताइए। तो भगवान ने यही ज्ञान दिया है, चालू किया है, पहले मेरी अपरा प्रकृति को समझो, मैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच, इसको भगवान ने समझाने का प्रयास किया। हम भगवान के अप्राकृत दिव्य स्वरूप को, उनके धाम को, उनकी लीला को, उनके परिकरों को अपने प्राकृत बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए पहले उनकी सृष्टि की विशालता और कुशलता को देखें, तब अपने आप हम अनुमान करेंगे वो भगवान बहुत महान है। जैसे उनकी दया का अनुमान करना हो, भगवान कितने दयालु हैं यदि इसको सोचना हो, तो हम अपने जीवन से इसको जान सकते हैं कि हमारे जीने के लिए, खाने के लिए, या हमारे लिए क्या क्या आवश्यक है, और सब भगवान दे रहे हैं, वही दिए। तो भगवान के इस दान की जब हम याद करते हैं, तब सहज उनके करुणा को हम समझ सकते हैं, उनके सौहार्द को समझ सकते हैं। सुहृदम सर्वभूतानां, इसके साथ ही साथ उनके विशाल ज्ञान को भी हम थोड़ा थोड़ा समझ जाएंगे। देखिए सृष्टि की कुशलता, कितना आसानी से उन्होंने लोकों का निर्माण किया है। रात में हम देखते हैं अनंत अनंत लोक हवा में तैरते, आकाश में टंगे हुए। आजकल के लोग कहते हैं कि वो परस्पर ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए, वो नहीं गिरते। पृथ्वी कुछ को खींच रही है, वो इधर से खींच रहा है, परस्पर तन करके सब टिके हुए। लेकिन इस पर भी एक प्रश्न होता है, ठीक है मान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति से एक दूसरे के द्वारा धारण किए गए, तो प्रश्न हो गया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कौन भरा, कैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसमें आया, और उन वस्तुओं का निर्माण कौन किया, कोई न कोई है। लेकिन इसका तो सीधा उत्तर देते हैं कि ये तो सब अपने आप हो गया, और ये कहो कि हमको ज्ञान नहीं है कि अपने आप कैसे हो गया। यहां कोई भी दृश्य अपने आप होता है, उसके पीछे कारण है, यदि देखा जाए तो कारण है। मान लीजिए 10-20 कुत्ता मिल करके मीटिंग करें इस सृष्टि एरिया में, और वो कहेंगे ये सब बिल्डिंग अपने आप बाय चांस हो गया। ये मनुष्य जो जानते हैं कि नहीं नहीं बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इसके पीछे प्लान होता है, ये होता है, कोई स्कूल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इसकी एक प्रक्रिया है वास्तव में, तो ये कैसे कहेंगे कि बाय चांस हो गया। बाय चांस नहीं होता है कुछ भी, सबके पीछे प्लान होता है। इस सृष्टि के पीछे भगवान का प्लान है, और ये किसके लिए सृष्टि की गई है, हमारे लिए। तो कोई भी घर मकान बनता है, रोड बनता है, सब कुछ होता है, तो उसके पीछे एक प्लान होता है, योजना होती है, और किसके लिए होती है, मनुष्यों के लिए, हम लोगों के लिए है। जितने भी घर बने हैं, घर बना बना करके लोग बेचते हैं, पहले प्लान है कि हम बेचेंगे इसको, उसके पीछे प्लान है। ऐसे नहीं फालतू बना बना करके आकाश घेरते जा रहे हैं, उसके पीछे प्लान है। भगवान ही ऐसे फालतू नहीं है कि ऐसे बना बना करके लोग और घुमा रहे हैं खाली, वो सब भरे पड़े हैं, और यहां जितनी संख्या है इससे कई गुना संख्या वहां स्वर्ग में, शास्त्र वर्णन करता है, कई गुना अधिक संख्या है। यहां तो कुछ नहीं, लेकिन वहां स्थान भी इससे लाखों गुना ज्यादा है। देवताओं का वर्णन है पंचम स्कंध में कि प्रत्येक देवता के पास कई अपने अपने विमान रहते हैं, एक एक नहीं कई रहते हैं, और वे सब आकाश में ही रहते हैं, उनको एयरपोर्ट पर उतरने की आवश्यकता नहीं होती, और ना तो पेट्रोल की आवश्यकता होती, और ना कहीं मिस्त्री या गैरेज और रोड गंदा करके सब रख दिए, ऐसा नहीं। इधर तो आप भिकिल चलाइए, कुछ भी चलाइए, पहले वो मिस्त्री चाहिए और गैरेज चाहिए जहां बनाने के लिए, तो ऐसा कहीं स्वर्ग में नहीं है। वहां कोई शौचालय
जी है ही
नहीं, किचन है, सब कुछ स्वाभाविक होता है वहां, भोजन अमृत है, फल मिलते रहते हैं, अपने आप सब होता है, यहां से प्रयास करना पड़ता है। यह भगवान की विशाल सृष्टि है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कैसे सृष्टि होती है और कैसे प्रलय होता है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया है। और हम लोग ब्रह्मा जी के इस दिन को कल्प कहते हैं, कल्प से अतीत का ज्ञान नहीं दिया गया है, इसी को समझना बड़ा कठिन है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के दिन भर की दिनचर्या को ही समझना जब कठिन हो जाए, दिन भर में क्या क्या करता है, तो अब उसके साल भर के हम क्या समझेंगे, या उसके जिंदगी भर के काम को क्या समझेंगे, है कि नहीं। ये दिन भर में ही कितना काम किए यही नहीं गिन सकते न समझ सकते हैं, तो उसके जिंदगी भर के काम को क्या समझेंगे। तो यह जत्र साधारणो जत्र कैसे विधि साधारणो जत्र, विधि का अर्थ यही विधान, रूल रेगुलेशन, यही है साधारण विधि। तो कल्प के भीतर जो सृष्टि का वर्णन है यही सामान्य विधि है, और ब्रह्मा जी के एक दिन से उनके दूसरे दिन की भी सृष्टि को समझना चाहिए, दूसरे दिन से तीसरे दिन की सृष्टि को, और इस तरह एक महीना, एक महीने से दूसरे महीने, दूसरे महीने से तीसरे महीने, और इस तरह एक एक महीने से उनके वर्ष को समझना चाहिए, और वर्ष से फिर दूसरे वर्ष को, इस प्रकार से 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। यह सृष्टि बार बार होती रहती है, होती रहती है। तो हम लोग जो इस श्रीमद् भागवतम सिद्धांत के अनुयायी हैं, और हम लोग जानते हैं कि वास्तव में सब कुछ भगवान से सृष्टि होती है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव, मुझसे सब कुछ प्रभव प्रकृष्ट भाव जन्म लेता है, सब कुछ का प्रादुर्भाव मुझसे हुआ है और मत्तः सर्वम प्रवर्तते और मैं ही सबको चला रहा हूं, मैं जन्म दिया हूं और मैं सबको पाल रहा हूं पोष रहा हूं। इसको प्रवर्तन कहते हैं, प्रभव और प्रवर्तन दो शब्द भगवान बोल रहे हैं। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं सबको जन्म दिया हूं, सबको सर्वस्य, सर्वस्य का अर्थ है नॉट ओनली नरस्य, केवल मनुष्य का नहीं, केवल मनुष्य का ही नहीं, सर्वस्य का अर्थ सभी जीवों का और सभी वस्तुओं का, भूमि आदि का भी। भूमि को भगवान ने उत्पन्न किया, जल को भगवान ने उत्पन्न किया, इसके साथ ही साथ ब्रह्मा को भी, भगवान शिव को, देवताओं को, सबको, और उन्होंने जिन लोगों को उत्पन्न किया ये सब भी वास्तव में भगवान के द्वारा उत्पन्न किए गए समस्त वस्तुएं। अहम सर्वस्य, सर्वस्य शब्द पर हमें ध्यान देना चाहिए, सब कुछ का जन्मदाता मैं हूं और जैसे चल रहा है, प्रवर्तन हो रहा है, पालन पोषण हो रहा है, वो मत्त मेरे द्वारा हो रहा है, मैं पाल पोष रहा हूं। इति मत्वा, इस बात को मानकर समझकर विद्वान लोग मेरा भजन करते हैं, इस बात को जान करके कि मैं ही सबका पालक हूं, पोषक हूं, मैं ही मां हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा समझ करके बुधा शास्त्रज्ञ लोग, विद्वान लोग मां भजनते, मेरा भजन करते, ऐसा जानते। इति मत्वा भजनते मां बुधा, बुधा का अर्थ होता है ज्ञा, वो जानते हैं, जिनको ज्ञान है, अनुभव है, वे मानते हैं मुझको इस रूप में, और तब क्या करते हैं, मां भजन, मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। कैसे? भाव समन्विता, मेरी सेवा करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, भजन करते हैं प्रेम के साथ, भाव से समन्वित, भाव से करते हैं। देखिए, भाव की पूजा में और पूजा में अंतर है। जैसे हम होटल में जाते हैं खाने के लिए, तो होटल में कुर्सियां रखी रहती हैं और हमको वहां बैठाया भी जाता है, आइए आइए बैठिए बैठिए, और भोजन लाया भी जाता है, पूछा जाता है और लीजिए और लीजिए, लेकिन भाव समन्वित नहीं होता है, वो अर्थ समन्वित होता है। देखने में तो लगता है कि हम दे रहे हैं भोजन, हमको भोजन दिया जा रहा है, ये किया जा रहा है, लेकिन वो भाव समन्वित नहीं है। लेकिन वही दूसरी जगह जब हम अपने घर में खाते हैं, मान लीजिए कोई गृहस्थ है, उनकी पत्नी भोजन कराती है, या माँ भोजन कराती है, या अपनी बच्ची भोजन परोसती है, तो वहां भाव होता है, संबंध के कारण प्रेम होता है, भाव होता है। ऐसा नहीं कि वह परोस करके होटल की तरह वो भी चार्ज करेगी, ऐसा नहीं है, वह पकाती है, परोसती है, प्रेम से देती है, इसको भाव कहते हैं। अच्छा, भगवान के साथ और भी भाव उत्कृष्ट होगा, भगवान को इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, परंतु घर में तो पति को आवश्यकता है वस्तु की, नहीं भोजन मिलेगा तो उनका माथा खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान को इसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे स्वीकार करते हैं, और इसीलिए देना तो प्रेम से देना चाहिए कि हे नाथ, यह आपका है, आप इस वस्तु के भोक्ता हैं, इस प्रेम से देना चाहिए। यह समझ के नहीं कि भगवान बहुत आवश्यकता में है, हम नहीं देंगे तो ये सफर करेंगे, मर जाएंगे खाने बिना, या ये होगा वो होगा, ये व्यक्ति बहुत ऊंचा जब भाव होगा तो ये भी हम सोच सकते हैं। जैसे मां यशोदा, वो नहीं दूंगी खाने के लिए तो ये क्या खाएगा, ऐसे भूखा रहेगा, ये रहेगा, वो और ऊंचा भाव होने पर तो ये भी होता है, लेकिन प्रारंभ में ये भाव होता है कि भगवान जगदीश्वर हैं, सबको भोजन दे रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, सबको घर बनाए हैं, सबको दे रहे हैं, फिर भी हमारा यह कर्तव्य है, जब हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हमें इनके लिए करना है, इसको भाव कहते हैं। भाव पूर्वक भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो बुधा भाव समन्वित, भाव के साथ मेरा भजन करते हैं, भगवान को सब कुछ अर्पण करना, यही है भाव। उन्होंने सब कुछ दिया है और उन वस्तुओं को जब हम पुनः उन्हें देते हैं तो इसको भाव कहा जाता है। भगवान को भोजन देना, वस्त्र देना, उनको खूब सुंदर निवास स्थान देना, भगवान के लिए खूब अच्छा निवास आवश्यक है, क्योंकि भगवान कोई सन्यासी नहीं है, भगवान एक गृहस्थ है, उनकी पत्नी है, उनके परिकर हैं, उनके माता पिता हैं, है ना, भगवान अकेले नहीं रहते, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। पत्नी वालों को घर की आवश्यकता होती है कि नहीं बताइए। भगवान के लिए तो इस मीरा रोड क्षेत्र में सबसे सुंदर भवन होना चाहिए। वास्तव में बिल्कुल मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूं, और राधा गिरधारी जी ने जिन लोगों को दिया है अर्थ शक्ति, उन्हें अपनी अर्थ शक्ति का यह सही उपयोग करना चाहिए। नहीं तो फिर तो सब कुछ छूट जाता है, आदमी ले ही नहीं जाता है। तो स्वयं में इस कार्य में लगना और दूसरों को उत्साहित करना जहां तक अप्रोच हो, और जथा शीघ्र भगवान के लिए भव्य महल बनाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए। आगे कोई ठीक नहीं कैसी परिस्थितियां आएंगी, इसलिए मैं जथा शीघ्र कह रहा हूं। ये सब वर्णन इसीलिए पढ़े जाते हैं वास्तव में, सब घुमा फिरा करके हम इस सेंस पर आ जाए कृष्ण हमारे त्राता हैं, कृष्ण हमारे प्रभु हैं, कृष्ण ही हमारे प्रिय हैं, सब कुछ हैं। उन्होंने हमको शरीर दिया, वाणी दिया, भोजन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारा स्वरूप है कि हम उनकी सेवा करें, हम उनसे प्रेम करें, और तभी हम सुखी रहेंगे। ये सब वर्णन इसीलिए किए जाते हैं। स्कूल कॉलेज में जो वर्णन पढ़ाए जाते हैं भूगोल का, ये सब का, वो तो केवल नंबर लाने के लिए पढ़ाए जाते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है, लड़के लिखते हैं, बस उसका उतना ही प्रयोजन है। लेकिन हम लोग जो गणित भूगोल पढ़ रहे हैं या सृष्टि के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा महाराज परीक्षित सुन रहे हैं, 7 दिन के अंदर मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वे सृष्टि की बात सुन रहे हैं, न तो भगवान के रासलीला की बात सुनने लगे, सृष्टि की बात सुन रहे हैं। जो देखने में लगता है कि क्या बाहरी लकड़ी पत्थर हवा पानी के विषय में सुनना है, लेकिन इससे जितनी मति भगवान में लगती है उतनी मति दूसरी लीलाओं के सुनने से नहीं लगती है। आदमी का इन सब विषयों को सुनने से अहंकार टूट जाता है, वो मान लेता मैं नहीं कुछ किया हूं, इसलिए मैं भोक्ता नहीं, सब कुछ भगवान किए हैं, भगवान सब कुछ है, वासुदेव सर्मिति स महात्मा सुदूर। इसीलिए इन विषयों को सुनना आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद बारम्बार इस बात को कहते थे कि दशम स्कंध नव स्कंध के बाद आया है, बहुत अध्यायों के बाद आया है। श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय हैं, तो दशम स्कंध में 90, एकादश में 31 और द्वादश में 13 है। 13 और 31 कितना होगा? 44। तो 44 और 90 134, 335 अध्याय में दशम स्कंद प्रारंभ होने से पहले 144 अध्याय केवल माइनस है, बाकी लगभग 200 अध्याय, लगभग 200 अध्याय, 200 चैप्टर्स पार किया गया। इन विषयों को सुनकर महाराज परीक्षित तब दशम स्कंद में गए, और दशम स्कंद में ही भगवान की बाल लीलाओं को सुनते सुनते तब तो श्री गोपीजनों के लीला का आस्वादन की। और दशम स्कंद बीतने के बाद पुनः उपदेश, पुनः इंस्ट्रक्शन है भगवान कृष्ण का उद्धव जी के प्रति, और जो 31 अध्याय में है। 4 अध्याय में 9 योगेश्वरों का उपदेश है और बाकी में भगवान कृष्ण का उपदेश। द्वादश में पुनः उपदेश है, कथा बहुत कम है, फिलॉसफी की बहुत आवश्यकता है, कथा कहानी सुनने से कुछ नहीं होगा। तो ये सब दर्शन दिए गए हैं भागवत के द्वितीय स्कंध में, विशेष करके वह सुंदर तरीके से। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी की सृष्टि है, भगवान ने सृष्टि किया और ब्रह्मा, और उसी सृष्टि में से ब्रह्मा जी सृष्टि किया, उनके पुत्रों ने सृष्टि किया, हम सृष्टि कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा से लेकर के और हम पर्यंत सभी भगवान कृष्ण के दास, वही हमारे सब कुछ हैं, वही जिला रहे हैं, खिला रहे हैं। इस बात को हमेशा मन में रख करके उन्हीं से प्रेम करना चाहिए। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव से मन्विता, भगवान कहते हैं। तो कैसे भजन करते हैं, या कोई पूछे कि बुधा मां भजन्ति, मेरा भजन करते हैं, कैसे भजन करते हैं भगवान से पूछा जाए, तो भगवान कहते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयम तस्च माम नित्यम तुष्यंत च रमन्त। इस तरह भजन करते हैं। मत चीता मदगत प्राण, मत चीता उनका चित्त उनका मन मुझ में लगा रहता है, मन से भजन करते हैं। मदगत प्राण, प्राण का अर्थ इंद्रियां, और उनकी इंद्रियां मुझ में लगी रहती है, उनका हाथ मेरी सेवा में लगा रहता है, आंख दर्शन करने में लगा रहता है, कान सुनने में लगा रहता है, पूरा शरीर मेरी सेवा में लगा रहता है। इसका अर्थ है मत चीता मदगत प्राण, मदगत मई एवं गता प्राण इंद्रिया जे समते, इनकी इंद्रियां मुझमें ही लगी रहती हैं। जब बोलेंगे तो मेरे विषय में बोलेंगे, सुनेंगे मेरे विषय में सुनेंगे, पैर से चलेंगे तो मेरे लिए, हाथ से काम करेंगे मेरे लिए, इस तरह उनका सारा शरीर मुझमें लगा रहता है। कथयम कष्टमाम नित्यम, और नित्य मेरा ही बखान करते रहते हैं, मेरी बड़ाई करते रहते हैं, इसको कथन कहते हैं, मेरे बारे में ही कहते रहते हैं, कहते रहते हैं। कथयम कष्टमाम नित्यम, तो इस पर प्रश्न होगा कि अरे ऐसा करने में उनको ऊब नहीं होती है, डिस्गस्टेड नहीं होते? भगवान कहते यही उनका आनंद है, तुष्यंति च रमन्ति च, मेरे श्रवण कीर्तन में मेरी सेवा में ही उनको सुख है, इसी में वो संतुष्ट रहते हैं और इसी में रमण करते हैं। रमण का अर्थ है कि इसी में आनंद मिलता है उनको, कोई बाहरी रूल रेगुलेशन में फोर्स में बंध करके नहीं ऐसा करते हैं, उनका सहज अनुराग है, जैसे बच्चे खेलने में सहज लग जाते हैं। देखा जाता है ना बच्चों को, यदि ना डांटा जाए छोड़ दिया जाए तो ये खेलते ही रहते, जब तक थक करके सो न जाए तब तक ये खेलते रहते, इसको रमण कहते हैं, रमू क्रीड़ायाम। जिस काम में जिसको आनंद मिलता है तो बिना बाहरी दबाव के ही उस काम को करने लगता है ना, बिना दबाव के, तो इसको रमण कहते हैं। तो भगवान की सेवा में श्रवण कीर्तन में उनके डिस्कशन में भक्त अपने आप लगे रहते हैं, कोई नियम बनकर के नहीं, अपने आप अनुराग से, तो इसको तुष्यंत च रमन्ति च कहते हैं, वो लगे रहते हैं बिना किसी दबाव के। यही है उनका तोष, यही है उनका आनंद, और इस तरह से जब वे करते हैं तो मैं उनके हृदय नहीं रहता हूं, तो मैं उन्हें सारा ज्ञान दे देता हूं। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन चमान नित्यम पुष्यंत चमंत चेषाम सतत युक्तानम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, मैं बुद्धि योग देता हूं। इस बुद्धि योग का अर्थ भक्ति योग, वह उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूं जिससे वे मेरे पास आ जाते, ऐसी बुद्धि देते हैं। माम उपयान देते वे मेरे पास आ जाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं, हम लोगों से प्रश्न करते हैं, महाराज हम क्या करें, माया नहीं छूट रही है, कुछ कथा सुनते हैं तो ज्ञान उत्पन्न होता है लेकिन फिर हम फंस जाते हैं। तो भगवान उपाय बता रहे हैं कि आप हमेशा जप करते रहिए, कथिन तस्मा नित्यम, नित्य जप करते रहिए, भागवत पढ़ते रहिए, भगवान के बारे में बोलिए सुनिए, तब भगवान बुद्धि देंगे और आप भगवान से सटे रहेंगे। उपयांति उप मतलब निकट, वे बुद्धि जो वो बुद्धि जब देंगे, तेसा में वानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम नाश्याम आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्व, मैं भीतर ज्ञान के दीपक से उनका सारा अंधकार दूर करूंगा, अज्ञान मतलब आसक्ति आदि दूर कर दूंगा, और इस तरह से वे मुझसे चिपक जाते हैं, मुझमें आसक्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने प्रीचिंग में भी समझाने में भी ये दो बात बहुत बताना आवश्यक है, मत अहम सर्वस्व प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तत, इन दो बातों को बताना आवश्यक है। लोग वास्तव में जानते ही नहीं है कि भगवान विष्णु हमें पाल रहे हैं, मेरे जीवन के वही आधार है, वही सब कुछ दिए हैं, ये ज्ञान नहीं है लोगों को। यह सिद्धांत संसार में फैला दिया है लोगों में कि ये निराकार से सृष्टि हुई है या बाई चांस हो गई है, तो लोग समझते हैं कि सृष्टिकर्ता से हमारा कोई संबंध नहीं जो बाई चांस हो गई है तब हम सृष्टि करने वाले की सेवा क्या करें, उसने तो कोई दिया नहीं है हमको। जैसे किसी बच्चे को सिखाया जाए कि तुम बाई चांस जन्म ले लियो, कोई माता पिता नहीं है, शुरू से ही उसकी चेतना में ये आ जाए तो माता पिता की सेवा कैसे करेगा, नहीं करेगा। ये बताया जाता है कि बेटा तुम्हें मां ने 10 महीने गर्भ में धारण किया था, तुम उसकी गोद में खेले खाए पढ़ाया लिखाया सब किया, पिताजी तुम्हारे लिए सब किए, तो उसके मन में एक सहज इसीलिए श्रीमद् भागवत के प्रारंभिक स्कंधों में ये सब बातें लिखी गई हैं कि भगवान की सृष्टि को हमें समझना है। हरे कृष्ण जय कृष्ण। जानना चाहता हूं इसलिए वहां कुछ लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम लोग तारीख बनाने की
है।
नहीं, भगवान को क्या आवश्यकता है, भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, ब्रह्मा जी को कोई जरूरत नहीं, हम लोगों को जरूरत थी। थे हम लोग सूक्ष्म रूप में रहते सभी थे। भगवान गीता में कहते हैं कि नत्वे वा हम जात न सम नत्वम निमे जनाधिपा, ऐसा कभी समय नहीं था जब हम नहीं थे, तुम नहीं थे या राजा लोग नहीं थे, ऐसा कभी नहीं था कि हम लोग नहीं थे, और ऐसा कभी समय नहीं आएगा कि हम नहीं रहेंगे। हम सब समय थे, इस शरीर में नहीं थे, हम सो रहे थे, स्लीपिंग अवस्था में थे, गर्भोदक साई भगवान में, वही अपने श्वास से प्रकट करते हैं जीवों को, तो उनकी सृष्टि होती है। ये तो हम लोगों का जैसे पोशाक बना है विविध प्रकार से, डिजाइन टेलर बना दिया है, वैसे ब्रह्मा जी डिजाइन बना दिए हैं, लेकिन हम लोग तो हैं पहले के हैं। नहीं, ब्रह्मा जी स्वयं ही अनादि काल से हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी के रूप में जन्म होता है, उनके जन्म से पहले कहीं हम लोग हैं और ब्रह्मा जी भी हैं। ब्रह्मा के रूप में नहीं, लेकिन वे भी पहले के ही हैं। तो हम लोग सनातन हैं, भगवान जितने दिन के हैं उतने ही दिन के हम भी हैं, मतलब उन्हीं के समान सनातन। संस्कृत में ये शब्द है अद्यतन, सनातन, पुरातन, तो हम लोग सनातन तीनों काल में रहे। और भगवान को इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सृष्टि की, सृष्टि की आवश्यकता हम लोगों को है। तो भगवान को क्या जरूरत है भूमि पानी सब बनाने की, वैकुंठ में क्या इसकी कमी है, और ये सब कचरा क्यों बनाएंगे। उनके यहां तो स्वरूप शक्ति ही भूमि के रूप में है, चिन्मय शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी सब कुछ है, वहां का वृक्ष सब कुछ, ये सब बनाने की आवश्यकता उनको अपने लिए नहीं थी, हमारे लिए इसकी आवश्यकता। और कितनी आवश्यकता है हम लोग महसूस कर रहे हैं ना इस समय, तो बताइए। बहुत आवश्यकता, लोग कहते हैं जगह नहीं मिल रही है, बहुत कम जमीन है, ये है वो। जब भगवान ने थोड़ा बना दिया तो ऐसा नहीं कि हम बढ़ा लेंगे, जितना बना दिया उतने में काम चलाना है। और
तो मन उसका आत्मा के साथ डाल रहे थे,
मन बुद्धि अहंकार तीन को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और कर्मों का जो फल है उसी को मन कहते हैं, तो हम कर्म फल में लिपटे हुए जाते हैं, उसको कारण शरीर कहते हैं, और जब तक रहेगा तब तक हमको दूसरा शरीर लेना पड़ता है। यह शरीर तो यही छोड़ जाता है स्थूल शरीर, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ हम जाते हैं। जैसे हम सपना में इस स्थूल शरीर को भूल जाते हैं, बेड पर पड़ा रहता है यह शरीर, लेकिन फिर भी हम दूसरे शरीर से घूमते हैं, तो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर होता है, सुख दुख का अनुभव करता है। यह शरीर पड़ा रहता है पलंग पर, बेड पर, लेकिन दूसरे शरीर से घूमते हैं। इसी तरह मृत्यु के समय भी यह शरीर छूट जाता है और हम सूक्ष्म शरीर से जाते हैं। अगर सूक्ष्म शरीर से जीव मुक्त हो जाए तो उसी को मुक्ति कहते हैं। बौद्ध लोग ऐसा मानते हैं कि बस मर जाएंगे मुक्त हो जाएंगे, तो मरेंगे कौन नहीं, इसमें साधना क्या करने की आवश्यकता है कि नहीं, मरने के लिए कोई साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं तो आगे यदि मर ही रहे, मर जाने से कोई मुक्त नहीं होगा।
ये
तो उपवास करे चाहे कुछ भी, भगवान का स्मरण करे तब, यदि भगवान का स्मरण करे, नाम जप करे, उस अवस्था में शरीर त्यक्त हो जाए या त्याग दे स्वयं, तो वो अवश्य ऊर्ध्वगामी होता है।
भगवान को पाता है अथवा कोई योग्य शरीर फिर मिलता है उसको। लेकिन केवल उपवास करके भूखमरी से मर जाए तो उसे तो कोई मुक्ति होगी ना।
तो जब लोग मरते हैं और उनको नरक में ले जाया जाता है तो उनका जो भी कर्म का फल होता है उसका धन वहां मिल जाता है, तो फिर यहाँ आने के बाद
सब नहीं मिलता, बाकी रहता है। क्योंकि नरक भोगने से जीव मुक्त नहीं हो जाएगा, वही भजन नहीं है। वहां तो उसको कुछ सजा दी जाती है पापों की, इसके बाद फिर उसे जन्म मिलता है कई जोनियों में, धीरे धीरे ऊंचा आता है, सब कर्मों का फल वहीं नहीं समाप्त तो हो जाता है। हाँ, तो गीता में भगवान ने बताया है इसको, कर्मणो यदि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम कहना कर्मणो गति। विकर्म की गति जाननी चाहिए, अकर्म की गति जाननी चाहिए और कर्म की गति जाननी चाहिए। बड़ा कठिन है इस बात समझना, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं बोधव्यम, इसको जानना चाहिए। कठिन है लेकिन जानना चाहिए। तो पहले कर्म विकर्म अकर्म की गति जानने के पहले कर्म अकर्म विकर्म कहते किसे हैं ये जानना आवश्यक। कर्म का अर्थ होता है, शास्त्र में जो क्रियाएं लिखी गई हैं करने के लिए मनुष्य को, और जिसका कुछ फल बनता है, उच्च फल बनता है, अच्छा फल बनता है, उसको कर्म कहते हैं। जैसे स्वर्ग मिलना और सब नौकरी आदि मिलना, इस लोक में जैसे पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई करेंगे ठीक से रहेंगे तो आगे बिजनेस करेंगे या सर्विस मिलेगी, इसको मान लीजिए कर्म कहते हैं। और विकर्म का अर्थ होता है पाप, जो शास्त्र में मना किया गया है वो करना, जैसे चोरी करना, शराब पीना और सब करना है, ये सब विकर्म, विपरीत कर्म। पाप कर्मों को विकर्म कहते हैं और पुण्य कर्मों को कर्म कहते हैं। और अकर्म का अर्थ होता है जो कर्मबंधन से पार कर दे, भक्ति को अकर्म कहा जाता है। जैसे हम लोग ये भागवत सुन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो यह है अकर्म, यह कर्म नहीं है, यह हमको बांधेगा नहीं, कि ये बांधेगा नहीं किसी शुभ बंधन में, बल्कि मुक्त कर देता है। इसीलिए भक्ति को ज्ञान को अकर्म कहा जाता है, ये परिभाषा है। तो जानना चाहिए कि अकर्म का क्या फल होता है, विकर्म का क्या फल होता है और कर्म का क्या फल होता है, कर्म अकर्म विकर्म। तो हमें अकर्म में रहना है, क्रिया होगी। लोक में लोग ऐसे समझते हैं कि कुछ काम करना यही कर्म है, नहीं, हो सकता है कि वो विकर्म हो या अकर्म भी हो, क्रिया से उसका बहुत तात्पर्य नहीं है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर किसी का ऑपरेशन कर रहा है, पेट चीर दिया है, ऑपरेशन कर रहा है उसकी आंत को ठीक करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए तो काट दिया और कदाचित रोगी मर गया, और वहीं पर दूसरा व्यक्ति किसी के पेट में चाकू मार दिया उसको लूटने के लिए या जान मारने के लिए, और सपोज वो आदमी बच गया, नहीं मरा, फिर भी मारने वाले को दंड मिलेगा। और जो ऑपरेशन कर रहा था उसके ऑपरेशन करने से वो व्यक्ति मर गया, फिर भी उसको कोई दंड नहीं होगा। क्रिया दोनों में एक है कि नहीं, लेकिन दोनों का बिल्कुल विपरीत फल होगा, एकदम उल्टा फल होगा। क्रिया से कोई खास सामंजस्य नहीं। तो लोग आज तक यही समझते हैं कि अकर्म का मतलब होता है काम धंधा न करना, चुपचाप बैठना। लेकिन भगवान ने गीता में कहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म के, कभी भी एक सेकंड भी कोई जीव बिना कर्म किए नहीं रहता है, मतलब बिना क्रिया के नहीं रहता है। सोए रहते हैं तब भी सपना में काम करने लगते हैं, सब समय काम करते हैं। तो असली अकर्म का अर्थ यह है कि हम कोई भी कार्य करें तो भगवान से जोड़ करके करें, भगवान को अर्पण करके करें, तब वह हमारे लिए कर्मबंधन से मुक्त करने वाला कर्म होगा, क्रिया होगी। और भगवान ने यही जोर दिया है गीता में, तुम अकर्म में रहो, अकर्म में रहो, मतलब निरंतर एक्टिव रहो, पर मेरे लिए मत कर्म क्रीम, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो, मेरे लिए काम करो, तो इसको अकर्म कहा गया। और विकर्म तो स्पष्ट है, जैसे पंचम स्कंध में वर्णन है, पाप और उसका फल है नरक, और कर्म का फल है स्वर्ग। यह उच्च जाति में जन्म लेना, धनी परिवार में जन्म लेना, यह भी एक बंधन है, लेकिन यह कर्म का फल है। विकर्म का फल नरक, कर्म का फल स्वर्ग, और अकर्म का फल वैकुंठ। ये इस तरह से इसकी गति है, इसको समझना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से जब बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने ये उदाहरण दिया है चैतन्य चरितामृत में कि शंख किसी जीव की हड्डी है, समुद्र से निकलता है, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा में वो काम आता है। उसमें रखा हुआ जल पवित्र माना जाएगा, उसी जल से भगवान का अभिषेक होता है ना, जबकि वो हाड़ है, हड्डी है एक जीव की। तब कोई कहे कि तब जब एक तुच्छ जीव की हड्डी इतनी पवित्र है, तब आदमी की हड्डी में क्यों न किया जाए, तो कपाल लेकर के उसी से अभिषेक किया जाए भगवान को। इसी तरह से गाय के गोबर की बात की जाती है, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहां स्पष्ट कहा है, इसको शास्त्र प्रमाण कहते हैं। शास्त्र कहता है किसी वस्तु को कि अशुद्ध है तो शुद्ध है, और किसी को अशुद्ध कहता है तो अशुद्ध है। अब क्यों कह रहा है शास्त्र? कहने वाला सर्वज्ञ है, त्रिकालज्ञ है, जो कहा है शास्त्र, बोला है, वो सब कुछ जानता है, ये शास्त्र का अर्थ होता है। तो इसलिए क्यों कहा, कैसे कहा, अब हम तो सभी बातें समझते नहीं, लेकिन आजकल के डॉक्टर भी इस बात को कहते हैं कि गाय का गोबर जो है बहुत गुणों से युक्त है, ये बताते हैं। शंख के बारे में भले न बताए होंगे, लेकिन गाय के गोबर के विषय में भी वे बताते हैं कि इसमें बहुत से गुण हैं। एक बार एक भक्त गया था हमारे भागवत में एक जगह पर, तो वो बीआई का विद्यार्थी था, भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट का, गया था बॉम्बे से, तो हमसे बात करता था, उसे बहुत बोलने का स्वभाव था। वह कहा कि हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं, हम लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि विज्ञान के अनुसार वैदिक सिद्धांत सब सत्य है, हम लोग इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं। तो मैं पूछा कि और विज्ञान के अनुसार सिद्ध नहीं होगा तो वो बेचारा चुप हो गया। हमने कहा कि तुम प्रमाण को प्रमेय बनाना चाहते हो, सत्य हमारे शास्त्र है, चाहिए यह कि शास्त्र के अनुसार जो सत्य हो विज्ञान उसको हम माने, जो नहीं सिद्ध हो रहा है उसको मानने की कोई आवश्यकता नहीं। उस शास्त्र सिद्ध करने तुम नहीं चले हो, तुम्हें यह देखना है कि शास्त्र की कसौटी पर विज्ञान उतर रहा है या नहीं उतर रहा है तो उसे किक आउट करो, निग्लेक्ट करो। ऐसा नहीं कि विज्ञान की कसौटी पर कस करके शास्त्र देखेंगे और जो सही होगा लेंगे, तो तुम तो विज्ञान को मान रहे हो ना, शास्त्र तो मान नहीं रहे हो। मैं उसको इस तरह कहा, और वास्तव में उस दिन वो बेचारा समझा, वो उल्टा समझ रहा था। प्रभुपाद जी ने यह नहीं कहा है कि विज्ञान की कसौटी पर कसो, शास्त्र की कसौटी पर विज्ञान को कसो, और ठीक है तो स्वीकार करो, नहीं तो वो तो बेकार है, उस कचरे को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र ऑलरेडी सबसे बड़े वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा। भगवान से बढ़कर के कोई क्या ज्ञानी होगा, उन्होंने शास्त्र बनाया है सब कुछ। इसीलिए शास्त्र में लिखा गया है गाय का गोबर पवित्र है और शंख पवित्र है, चैतन्य महाप्रभु ने यही कहा है। जैसे यहां मान लीजिए कहीं वायर पर, इलेक्ट्रिक वायर पर लिखा गया हो डेंजर, खतरा, तो जिसने लिखा है
वह उसके खतरापन को समझता है, जानता है कि इसको छूने पर क्या होगा, है ना। ऐसा नहीं कि आज ला करके किसी चिड़िया ने टांग दिया है, जो बिजली के गुण धर्म को नहीं समझता है। वो जानने वाला टांगा है। और कोई व्यक्ति कहे मैं नहीं, हम स्वयं एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम अनुभव करना चाहते हैं कि क्या खतरा है। बताइए, मान लो कोई जिद करे, नहीं हम अनुभव करना चाहते हैं क्या खतरा है। कोई कहे कि तुम मर जाओगे, कहे नहीं हम मर कर अनुभव करना चाहते हैं, हम अनुभव करना चाहते हैं और दुनिया को सिखाना चाहते हैं। तो जाएगा छूने तो अपना अनुभव भी नहीं दे पाएगा, है कि नहीं। तो पूरा मौन शांत हो जाएगा। तो शास्त्र कहता है गाय का गोबर पवित्र है, मनुष्य का मल अपवित्र है, साफ कहता है। इसीलिए हमें मानना चाहिए। और बाकी उसमें गुण तो होंगे ही, उसका शोध करना चाहिए वास्तव में। लेकिन पहली बात है कि हमें मान लेना है, शास्त्र कहता है तो ठीक।
भगवान गीता के 17 अध्याय मतलब तीन विवाहित करते हैं, कर्म को और ज्ञान को। लेकिन शोभा जी तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो भगवान की भक्ति करते हैं वो लोग सतो गुण है। लेकिन हमने चाहे भगवान की भक्ति को तीनों गुणों से करें तो ऐसे क्यों करते
नहीं। भगवान की भक्ति तीनों गुणों से परे है, इनका प्रश्न यह है कि ये कहा गया है कि जो व्यक्ति, प्रभुपाद जी ने लिखा है कहीं तात्पर्य में कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है वो सत्वगुण में रहता है। लेकिन इनका प्रश्न यह है कि भक्ति तो अप्राकृत है, तो ऐसा क्यों लिखे हैं प्रभुपाद जी। तो वास्तव में भक्ति जो है वह अप्राकृत है, लेकिन उसको करने वाले जो साधक हैं वो प्रकृति के भिन्न भिन्न लेवल पर रहते हैं। कोई तमोगुण की प्रधानता में है, कोई रजोगुण की प्रधानता में है, कोई सत्वगुण में है। तो जहां है वहीं से भक्ति चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए हम सवेरे जगते हैं, आलस आ रहा है, उठ नहीं रहे, लेकिन फिर भी हरे कृष्ण 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 हरे करते रहते हैं। अभी हम तमोगुण के धरातल पर हैं, फिर भी भक्ति कर रहे हैं। किया जा सकता है भक्ति, क्योंकि जीव का स्वरूप है, तमोगुण में भी किया जा सकता है। भागवत के तृतीय स्कंध के 29वें अध्याय में इसका वर्णन। लेकिन यह फल होता है कि धीरे धीरे जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं तो हम तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण पर उठने लगते हैं, और सत्वगुण में उठने के बाद हम निर्गुण हो जाते हैं, अप्राकृत प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। ये क्रम है। तो प्रभुपाद जी कम से कम ये बताते हैं कि भक्ति करने पर कम से कम सत्वगुण में हो जाते हैं, तमोगुण में नहीं रहते, उठ जाते। तो सवेरे इस तरह से होता है, हम तमोगुण में हैं, घंटी बजी, जग गए, तो तमोगुण के भाव से दबे दबे हम बाथरूम में जाते हैं, इधर से सुस्ती में जाते हैं। लेकिन जब नहाते हैं, नहा करके चलते हैं तो सत्वगुण आ जाता है, तो उधर से दौड़ करके अपने रूम में आते हैं, स्फूर्ति आ जाती है। सर्व द्वारे सुप्रकाश उपजायते, भगवान ने कहा है कि समस्त इंद्रियों में प्रकाश आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, सत्गुण आ जाता है। जब वही जब हम तिलक करके और भगवान के मंदिर में जब जाते हैं तो हम सत्गुण में नहीं रहते हैं, अब हम अप्राकृत धरातल पर हो जाते हैं। जब भगवान सामने हो, नाम सुनाई पड़ रहा है, सब जगह वैष्णव भरे पड़े हैं, तो वहां रजोगुण भी नहीं है और तमोगुण का तो कोई प्रश्न ही नहीं, और सत्वगुण भी नहीं रह जाता है वहां। वह निर्गुण धरातल होता है इस समय, वास्तव में वह स्थिति होती है। यदि हमारी जीवा से भगवान का नाम आ रहा है, आंख भगवान के रूप को देख रही है और भगवान का नाम सुनाई पड़ रहा है, दर्शन भी वैष्णवों का होता है, विष्णु का होता है, तो यही है अप्राकृत धरातल। तो धीरे धीरे हम सत्वगुण पर होते हैं, इसके बाद हम अप्राकृत होते हैं। प्रतिदिन सबका कर्तव्य है कम से कम एक बार अपने को निर्गुण प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। मंगला आरती में तो निश्चित आ जाते हैं। ये कहीं भी रहे, जप करेंगे, खास करके उच्चारण करके जब हम जप करेंगे तो हम सत्वगुण में हो जाते हैं, धीरे धीरे निर्गुण होंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे राम हरे राम राम राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम।